सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार करना भारतीय लोकतंत्र को और भी जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी न केवल देश की सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि महिलाओं की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी आवश्यक है। वे कल जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 24 सीटों के लिए हुए मतदान में 61% से अधिक वोट पड़े, जो पिछले 35 वर्षों में सर्वाधिक है। पुलवामा, शोपियां, कुलगांव, किश्तवाड़, अनंतनाग, रामबन और डोडा के 7 जिलों में व्याप्त 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान में युवा और महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बढ़ते जुड़ाव का प्रमाण है। मतदाताओं ने बहिष्कार और हिंसा के खिलाफ रुख स्पष्ट करते हुए चुनाव में अत्यंत उत्साह से हिस्सा लिया। मतदान केंद्रों पर वोट डालने वालों की लंबी कतारों ने दुनिया को जम्मू कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और विश्वास दिखा दिया। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था के साथ ही बाधा मुक्त मतदान के लिए 32 पर्यवेक्षक नियुक्त थे। हरियाणा विधानसभा में एक ही चरण में हो रहे चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। सोमवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीबीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था आसानी से दोगुनी कर सकता है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में सुब्रमण्यम ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत जनसांख्यिकी रूप से दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि उस समय भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय लगभग $20,000 होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यक्तियों के लिए पेटेंट पंजीकरण शुल्क में सरकार द्वारा 80% कटौती के निर्णय की घोषणा की है। नई दिल्ली में ट्रेडमार्क सर्च और आईपी सारथी चैटबॉट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उद्घाटन पर उन्होंने ये बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए विश्व कृषि मंच ने द्वितीय वैश्विक कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विश्व बांस दिवस पर मुंबई के एनसीपीए सभागार में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 27 तारीख से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू होगा। इस श्रृंखला के बाद भारत और बांग्लादेश 3 2020 मैचों की श्रृंखला खेलेंगे। चीन के चोंगझोऊ में चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की मालविका बंसूर ने महिला सिंगल्स में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया तुनजुंग को पहले दौर में 26-24, 21-19 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।